नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 10 स्कंद संख्या 10 अध्याय संख्या 23 श्लोक संख्या 40 मेरे पीछे दोहराइए। देख जान श्रेय वृद्ध यज्ञ व्रतम धेक बहुज्ञतां धेक कुलम धेक क्रिया दाक्षं विमुखाये त्वदोक्षजे धेक जान श्रेय वृद्ध यज्ञ व्रतम धेक बहुज्ञतां धेक कुलम धेक क्रियाय दाक्ष्यम विमुखाये त्वदोक्षजे धेक जान श्रेय वृद्ध यज्ञ व्रतम धेक बहुज्ञतां धेक कुलम धेक क्रिया दाक्ष्यम विमुखाये त्वदोक्षजे धेक धिक्कार है जन्म जन्म ना हमारा त्रिव्रत तिबारा पहले माता पिता से फिर ब्राह्मण दीक्षा द्वारा तथा तीसरा वैदिक यज्ञ करते समय दीक्षा द्वारा यत तत जो भी धिक धिक्कार है व्रतम हमारे ब्रह्मचर्य व्रत को धिक धिक्कार है बहुज्ञताम अपार विद्वता को धिक धिक्कार है कुलम हमारे उच्च वंश को कुलीनता धिक धिक्कार है क्रिया दाक्षयम कर्म कांड में हमारी दक्षता को विमुखा वैरी ये जो तू फिर भी अधोक्षजे भगवान में। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की ब्राह्मणों ने कहा बोलिए धिक्कार है हमारे तिबारा जन्म हमारे ब्रह्मचर्य तथा हमारी विपुल विद्वता को धिक्कार है हमारे उच्च कुल तथा यज्ञ अनुष्ठान में हमारी निपुणता को इन सबको धिक्कार है क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। तात्पर्य पढ़ता हूं। ऊपर दी गई परिभाषाओं के अनुसार त्रिविध जन्म तीन बार जन्म का द्योतक है। नंबर एक शारीरिक जन्म, नंबर दो ब्राह्मण दीक्षा और नंबर तीन वैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षा। परम ब्रह्म भगवान कृष्ण से अनभिज्ञ होने पर यह सब व्यर्थ है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 31 31 से चलना है। श्री भगवान उवाच पत्यो ना विसूयेरन पितृ भ्रातृ सुतादयः लोकाश भूमयो पेता देवा अप्यनुमवन्ते। अनुवाद में लिखते हैं श्री प्रभुपाद भगवान ने उत्तर दिया तुम यह विश्वास करो कि ना तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रु भाव रखेंगे और ना ही तुम्हारे पिता भाई पुत्र अन्य संबंधी जन या आम जनता। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा, यहां तक कि देवतागण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। चर्चा इसके पहले श्लोक में बड़ी सुंदर बात आई है, अब हमारे पति माता पिता पुत्र भाई अन्य संबंधी तथा मित्र हमें वापस नहीं लेंगे और अन्य कोई हमें किस तरह शरण देने को तैयार हो सकेगा, क्योंकि अब हमने अपने आप को आपके चरण कमलों पर फेंक दिया है, अतः हमारे कोई अन्य गंतव्य नहीं है, अतः हे अरिंदम हमारी इच्छा पूरी कीजिए। ये जो मैं अभी श्लोक पढ़ा है 30वां, इसमें क्या समस्या पैदा हो रही है? एक समस्या आ रही है जो आज भी है, वो समस्या हम देखते हैं कई बार कि कई परिवारों में हमें वो समस्या आज भी दिखाई देती है। और कैसी समस्या है? उतना डेप्थ में नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर से जो है आज भी मिलता है। समस्या है, बहुत सारे हमने आज के डेट में देखे हैं, जगह जगह प्रचार करते हैं तो बहुत जगह से प्रश्न आता है, बहुत जगह से लोग क्वेश्चन करते हैं आगे बाद में, तो मेरी एक समस्या का हल करिए कि मैं तो कृष्ण भावनामृत में आ गया हूं या आ गई हूं, वन ऑफ द टू, परंतु मेरा पति नहीं है या मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरे अगेंस्ट है। घर में रोज इस बात पे क्लेश होता है, रोज इस बात पे झगड़ा होता है, ऐसा देखने में मिलता है कि नहीं मिलता? डू वी गेट इट और डोंट वी गेट इट? यहां भी है, मेरे घर के पास जो है हमारे प्रोग्राम में माता जी आया करती थी, उनका हस्बैंड 3-व्हीलर ड्राइवर है, वो मतलब आने में पिटाई कर देता था, यूज्ड टू बीट। अगर उन्होंने जो है भगवान की कथा सुनने जाना है या घर में बैठ के भगवान के नाम का जप करना है तो घर में क्लेश हुआ ही हुआ है, उसका कोई मतलब क्लेश से छुटकारा है ही नहीं, पिटाई हुई हुई है उस बेचारी की, उसने बड़ा कष्ट झेले, मतलब नौबत यहां तक आ गई कि मैं इनसे जो है तलाक ले लूं, छुटकारा पा लूं। भगवान के प्रति समर्पित होना, भगवान के प्रति उनकी सेवा में आना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथा सुननी, आज भी कई लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं इसको स्वीकार नहीं करते। रिवर्स भी है, पत्नियां कहती हैं हम बड़ी उच्च स्थिति में जा पहुंचे हैं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं, तुम क्या है भोग बनाए जा रहे हो और उसको खाए जा रहे हो, इसी लेवल पे फंसे हुए हो अभी तक। ये भी लेवल से ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये समस्याएं क्या है कि हम अभी तक जो है संसार के सम्मुख हैं और भगवान से विमुख हैं। तो यहां जो 31वां श्लोक है उसमें बड़ी सुंदर चर्चा आई है, तुम ये विश्वास करो तो ना तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रु भाव रखेंगे, ना ही तुम्हारे पिता भाई पुत्र अथवा अन्य संबंधी जन या आम जनता। कमिटमेंट भगवान दे रहे हैं, वो कमिटमेंट झूठी नहीं हो सकती, किसी भी लेवल पे उस कमिटमेंट को असत्य समझना जो है हमारी गलती है। हाँ, आज के युग के अंदर जो कलयुग चल रहा है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, समय लगता है, फिर हौले हौले सब व्यवस्थित हो जाता है, सब चीजें ऑटोमेटिकली सेट होती चली जाती हैं, ऐसा हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है, परिवारों में देखा है, अपने कम्युनिकेशन में देखा है, अपने जानकारों में देखा है, इट हैपन्स। तो यहां इसमें एक बात और कही गई कि इस सारे कार्य करने के लिए भगवान कहते हैं मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा, पर हमारे पास आज की तारीख में समझाने के लिए तो भगवान हमारे सामने आते नहीं। ये तो नहीं हम कह सकते कि मेरा पति से झगड़ा हो रहा है या उनको समझाने का प्रयास कर रही हूं और भगवान साइड में खड़े होकर मेरी साइड ले रहे हैं या मेरे उनको समझा रहे हैं, मेरे पति को या मेरी पत्नी को समझा रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस यूज किया गया है कि मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा, इसका क्या अर्थ है, क्या रेफरेंस है इसका, कैसे समझाएंगे, किस तरह समझाएंगे? उसका एक ही अर्थ है कि भगवान की जो वाणी है वो भक्त के मुख से प्रकट होगी, गुरु के माध्यम से प्रकट होगी, गुरु से सानिध्य होगा, तो गुरु उनको जो है बात को समझाएंगे। और हमने देखा है जब गुरु महाराज किसी से कोई शब्द कह देते हैं तो उसके लिए ब्रह्म वाक्य बन जाता है, उसको तुरंत स्वीकार कर लेता है। तो जो बातें यहां पर लिखी जा रही हैं उसका आज के युग के अंदर हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है कि कैसे लोगों में बदलाव पाया, कैसे लोगों में चेंजेस आए। तो उस समय भी ये सही था और आज भी ये सही है, दोनों स्थितियों में सही है। और यहां क्या है, यहां तक कि देवतागण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। अब इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? कई बार आती है समस्या, मैं ना बचपन से देवी की आराधना करती थी, अब मैं भगवान कृष्ण की आराधना में आ जाऊंगी तो देवी नाराज तो नहीं हो जाएंगी? मैं फला देवता की जो है बचपन से आराधना करता था, मैंने अब जो है कृष्ण के प्रति मेरा आकर्षण हो गया है, तो वो देवता नाराज तो नहीं हो जाएंगे? तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी गई है, आंसर दिया गया है कि भगवान कहते हैं जब तुम मेरे प्रति समर्पित हो जाओगे तो मेरे प्रति जो तुम्हारा समर्पण है उसकी एक्सेप्टेंस, उसका अनुमोदन देवता भी करेंगे, वो इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप भगवान के प्रति समर्पित हो देवता नाराज हो जाए। अरे वो भी तो उनके प्रति समर्पित है, वो भी तो उन्हीं के आदेश में कार्य कर रहे हैं। तो किसी भी लेवल के ऊपर जो है हमें ये देखना है कि हमारा समर्पण 100% भगवान के प्रति होना चाहिए, और हमें वो लेवल को स्वीकार करने के लिए, उस लेवल को पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। और हमारे प्रयास में क्या है, विचलित नहीं होना है। भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शा तो कौन तो है शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनीय नित्या तान तिक्षोभ भर। ये सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, सुख और दुख इंद्रिय बोध से होते हैं, इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास कर, प्रैक्टिस, सहन कर इनको, सहन कर। सहन किसके लिए करना है? स्वामी के लिए अर्थात कृष्ण के लिए। रिजल्ट्स आज नहीं है तो कल मिलेंगे। हम भक्तों को देखते हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे ब्रह्मचारी बनने के लिए आते हैं, घर में बड़े झगड़े हो जाते हैं, बड़े क्लेश हो जाते हैं, माता पिता रैंपेज पे आ जाते हैं, मंदिर में आके झगड़ा करने बैठ जाते हैं, मतलब बड़ी कष्टदायक स्थितियां होती हैं। बच्चा विचलित नहीं होता है, हौले 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 माता पिता स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस ही इज ऑन द राइट ट्रैक, ये सीधे मार्ग पर चल रहा है, हम ही गलत मार्ग पर चल रहे थे। तो ये जो है स्थिति जो है हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता बन जाती है। हमको विचलित नहीं होना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ जो है उसके माता पिता को समझाने के लिए भक्त हैं, मंदिर अध्यक्ष हैं, महाराज हैं, तो ये सब जो है कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल्स के अंडर, उनके उनके अंडर उनको समझाते हैं हौले हौले हौले, एक सिटिंग में, दो सिटिंग में, तीन सिटिंग में बातें जो है क्लैरिफाई होती जाती हैं, और व्यक्ति जो है, बच्चा जो है ब्रह्मचर्य के जीवन में आ जाता है और प्रचार में लग जाता है। ये स्थितियाँ डिफिकल्ट सिचुएशंस तब भी थी, वो आज भी हैं, परंतु एक जो प्लस पॉइंट था वो था कि भगवान स्वयं साक्षात उपस्थित थे, आज भी स्वयं साक्षात उपस्थित हैं, और साथ ही अपने भक्तों के माध्यम से, अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से, एक बहुत वाइड नेटवर्क के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित है। बहुत वाइड नेटवर्क है, भगवान का नेटवर्क छोटा नहीं है। मैं अभी पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में गया लेक्चर देने के लिए, तो वहां जाके पता लगा कि जिन जगह का हमने नाम भी नहीं सुना था वहां भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वहां भी है। मैं पानीपत लेक्चर देने गया तो वहां पे प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी किस दिन आपको कैथल लेके चलना है? मैंने कहा कितने लोग आते हैं प्रोग्राम में कैथल में? कहते 350। हमने कभी सोचा नहीं, ना वहाँ कोई मंदिर है, ना वहाँ कोई ऐसा हमारे पास कोई मतलब इंटीमेशन है, इन्फॉर्मेशन है, परंतु वहाँ पर भी जो है एक भक्तों ने समूह इकट्ठा कर लिया है कि वहाँ पे जो प्रोग्राम होता है उसमें 350 लोग आते हैं। तो ये नेटवर्क है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको जो है भगवान की वाणी से समझाने वाला मिल जाता। हम किसी को, मुझे याद है अच्छे तरीके से, 3 साल पहले दिल्ली में नहीं समझा पाए, बड़ा एडामेंट था, बहुत ही जिसे कहते हैं मतलब इतना सख्त था कि हमारी सारी बातें उसके ऊपर से निकल गई। इंसिडेंटली लुधियाना गया और वहां पे उसकी मुलाकात हुई और वहां से वापस आया तो मैंने कहा भाई आज तो बड़ा भाग्य हमारा, तुम प्रोग्राम में आ गए हो। अरे प्रभु जी मेरे को समझ में आ गई है। मैंने कहा हमने कई बार तुम्हें समझाया समझ में नहीं आई। नहीं, लुधियाना गया था ना वहां समझ में आ गई, यहां नहीं आई तो वहां नेटवर्क इतना है, इतना नेटवर्क है भगवान का कि यहाँ नहीं है तो वहां, वहां नहीं तो यहाँ, कहीं ना कहीं जो है बातें समझ में आ जाती हैं और व्यक्ति जो है वो कृष्ण भावनामृत में प्रवेश कर जाता। 32वें श्लोक में कहते हैं, ना प्रीतये अनुरागाय यंग सांगो नरामि तन्मनोमयी युञ्जाना अचरी माम व्याप्यस्त। तुम सबों को मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना निश्चय ही इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ना ही इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मनों को मुझ पे स्थिर करो, इस तरह तुम शीघ्र ही मुझे पा सकोगे। बहुत ही सुंदर और सटीक बात कही, इंपॉर्टेंट शारीरिक संबंध है या इंपॉर्टेंट मन का संबंध है? क्या संबंध इंपॉर्टेंट? या क्या बोला जा रहा है? सानिध्य में रहना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि मन को मुझ में स्थिर करो। द्वारका के अंदर रानियां जो हैं भगवान के अंग संग रहती हैं महल में, परंतु भगवान जो है किसका किसको याद करते हैं? राधे राधे गोपी गोपी। उनसे कैसा संबंध है? मन का, सानिध्य का नहीं है। वो तो छोड़ा 11 वर्ष की अवस्था में जब मथुरा आगमन हुआ उनका, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, उनका संबंध समाप्त हो गया। सानिध्य संबंध जो है, साथ साथ रहने का संबंध जो है समाप्त हो गया। पर संबंध कैसा है? मन का। भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिनः। कि तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी चेतना में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो मन का संबंध स्थापित हो गया, निरंतर निरंतर एक क्षण के लिए भी उसमें गैप नहीं चाहिए, नित्य मतलब हर क्षण हर पल हर मोमेंट आपका भगवान से संबंध स्थापित हो गया, तो भगवान क्या कहते हैं? तस्या एम सुलभ, मैं उसके लिए सुलभ हूं, इजिली अवेलेबल हूं कि तुम पुकारोगे और मैं चला आऊंगा, मुझे प्राप्त कर सकोगे। यहां क्या है? इस तरह तुम शीघ्र ही मुझे पा सकोगी। मुझे प्राप्त करने का साधन क्या है? मुझे प्राप्त करने का साधन यह है कि तुम्हारे स्मरण में हमेशा मैं रहना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, नो वन एल्स। अब यहां पर जो है कई लोग प्रश्न कर देते हैं, ये घर का काम ना करें, ऑफिस का काम ना करें, काम धंधे में नहीं जाएं, हर समय भगवान का स्मरण करते रहें, हमें और कोई काम ही नहीं है क्या? घर भी तो चलाना है, घर भी तो देखना है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे काम आ जाते हैं। अच्छा अच्छा बात तो आप ठीक कह रहे हो, तो भगवान का स्मरण कब करते हो? मैंने ना रोज ऑफिस से आने के बाद 7 से लेकर 7:30 तक का टाइम रखा हुआ है, वो आधा घंटा में आंखें बंद करके ध्यान लगा के भगवान का स्मरण करता हूं। 24 घंटे में से 8 घंटे सोना और आधा घंटा भगवान का स्मरण करना, जिसमें भी बहुत सारी डिस्टर्बेंस हैं, 8.5 घंटे चले गए और 15.5 घंटे आप संसार का स्मरण कर रहे हो, तो संसार मिलेगा कि भगवान मिलेंगे? किसका ज्यादा स्मरण हुआ? स्मरण किसका है ज्यादा? भगवान का ज्यादा स्मरण हो रहा है कि संसार का ज्यादा स्मरण हो रहा है? तो जिसका ज्यादा स्मरण करोगे वही तो मिलेगा। और फिर हम कहते हैं मुझे भगवान नहीं मिलते, भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान से मेरा मुलाकात नहीं हो पा रही है। अरे मुलाकात तो तुमने संसार से कर रखी, भगवान से तो करी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट नित्य मेरे साथ होना चाहिए तुमको। मन मना भव मत भक्तो, मन 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 मुझे दे दो, तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। अब वो स्मरण कैसे होगा? मुझे तो घर के काम भी करने हैं, मुझे तो ऑफिस में जाना है। माता जी कहने लगी, रोटी ना बनाऊं, खाना ना तैयार करूं, सब्जियां भी तो बनानी है, कपड़े भी तो धोने हैं, सफाइयां भी तो करनी है, डस्टिंग भी तो करनी है, मेरे को तो घर में 100 काम है। और आप कह रहे हो भगवान का स्मरण करते रहे तो कैसे हो जाएगा? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यस, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। पर जब फिलोसॉफिकली उसको समझ लेंगे तो डिफिकल्टी नहीं रहेगी बिल्कुल, एकदम बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, एकदम आसान। 6 महीने के बच्चे को आपने बिस्तर पे डाल दिया और खाना बनाने चली गई, छौंक लग रहा है, सब्जी काटी जा रही है, चपातियां बन रही हैं, आपका ध्यान चपातियों में है, छौंक में है, सब्जी में है या बच्चे में है? गिर ना जाए, चोट ना खा जाए, लुढ़क ना जाए, उसकी आवाज बिल्कुल हल्की सी चू भी करेगा फट कान में जाएगी, वहां पहुंच जाओगे आप। तो आपके स्मरण में सब्जी है या आपके स्मरण में बच्चा है? तो इसी तरह जो है, आप उस बच्चे की जगह अगर भगवान को रख देंगे कि यस, हर वक्त स्मरण के अंदर भगवान रहेंगे, तो अपना कोई भी आप कार्य करोगे, दैनिक कार्य कोई भी करोगे, तो आपके स्मरण के अंदर भगवान हर समय रहेंगे, अनन्य चेता चिंतन में हर समय भगवान रहेंगे। यहां यही कहा जा रहा है कि इस तरह तुम शीघ्र ही मुझे पा सकोगी। फॉर्मेट क्या बताया है कि तुमको अपने मन को मेरे पर स्थिर करना है। अगले श्लोक में कहते हैं, श्रवणा दर्शना ध्यानयामयी भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतिया ततो गृहान्। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्च विग्रह स्वरूप के दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने, मेरे नामों तथा महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, भौतिक सानिध्य से नहीं। अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं 3rd स्कंद के 29वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि नव दीक्षित भक्त भगवान के अर्च विग्रह के सामने खड़ा होकर कहता है, भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। भगवान सामने खड़े हैं और रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। और उसने अभी अर्च विग्रह को भगवान स्वीकार नहीं किया। जो एक डिवोटी एडवांस हो जाता है वो कहता है, भगवान आपने बड़ी कृपा करी जो आपने मुझे अपने दर्शन दिए, अब मुझे अपनी सेवा में लगाइए, अब मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो जो फॉर्मेट है, जो थिंकिंग फॉर्मेट है, जो हमारी यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग है, जो हमारे यहाँ पे ट्यूनिंग है, उसमें चेंज आ गया, उसमें बदलाव आ गया। तो यहाँ यही चर्चा हो रही है कि मेरे विषय में सुनने, अर्थात कथा, नाम रूप गुण लीला धाम, इनकी चर्चा सुनने में, वर्णन सुनने में, कथा सुनने में, भगवान के अर्च विग्रह स्वरूप के दर्शन करने में, और भगवान के ऊपर ध्यान लगाने में, मतलब हर समय मन के अंदर भगवान रहे, और फिर भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम की चर्चा, भगवान के नाम रूप पूर्ण लीला धाम की चर्चा, दूसरों को बताना, आपस में परस्पर डिस्कस करना, कहते हैं इन सब से भगवान कहते हैं मेरे प्रति प्रेम बढ़ता। इसमें एक चर्चा आई परसों, मैं गुड़गांव में कथा कर रहा था तो वहां पे एक भक्त ने प्रश्न किया, अरे मेरे मन में ना मंदिर जाने का मन नहीं करता, मंदिर क्यों जाना चाहिए? Why? मैं भगवान का नाम लेता हूँ, गाड़ी चलाता रहता हूँ, लेता रहता हूँ, मतलब माला नहीं जपता हूँ पर भगवान का नाम लेता हूँ, परंतु ना मंदिर जाना क्यों आवश्यक है, मंदिर क्यों जाना चाहिए, मंदिर जाने का क्या पर्पस है? हम सब लोग भक्त बैठे हैं, अगर हम किसी से पूछें कि मंदिर जाने से आपको क्या लाभ होता है, तो भक्तों का एक ही जवाब आएगा कि मंदिर जाने से हमारी भक्ति की बैटरी चार्ज हो जाती है, मन भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, भक्तों का संग हो जाता है, भक्तों से भगवान की चर्चा हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है दो दिन तीन दिन जब मंदिर नहीं आ पाते हैं तो मन जो है प्रफुल्लित रहता है, उसके बाद जब बैटरी थोड़ी डाउन होनी शुरू हो जाती है फिर मन आता है चलो भी आज मंदिर चला जाए, और फिर मंदिर में आ जाते हैं, फिर बैटरी चार्ज कर लेते हैं। इस्कॉन के जितने भी टेम्पल्स हैं सारे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां आपको अलग अलग समय पे कोई ना कोई कथा वार्ता क्लास सिस्टम चल रहा है, जहां आपको ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। यू कीप ऑन गेटिंग नॉलेज। सुबह भागवतम हो गई, शाम को भगवत गीता हो गई, दोपहर में भी और क्लास हो गई, इधर भक्ति वृक्ष हो गया, उधर को यूथ क्लास हो गया, मतलब आपको जो है सारा दिन किसी ना किसी मिनट पे किसी ना किसी मौके पे आपको भगवान के नाम रूप कुलीला धाम की चर्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होती मिल जाती है। तो आप जब मंदिर में आते हो तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, इन सब के साथ साथ कृष्ण प्रसाद मिलता है, जिसको खाने से फिर आपकी आत्मशुद्धि होती है, यू गेट प्योरीफाइड। और जब घर जाते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं कि दो महीने हो गए हैं वृंदावन नहीं गए, चलो बैटरी चार्ज करके आते हैं, एक महीना हो गया है वृंदावन नहीं गए, चलो बैटरी चार्ज करके आते हैं। अर्थात बैटरी चार्ज करने का मतलब है कि कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, हमारा भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम को करने का सुनने का एक एक अट्रैक्शन हो जाता है, फिर प्रचार करने का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, भगवान की सेवा करने में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं हमारी बैटरी का चार्ज हो जाना, हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, हमें एक एक तरीके से जो है भगवान की सेवा के प्रति एक इतना आकर्षण हो जाता है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, बड़ा रहना ही कठिन है। इसके बाद 34वें श्लोक में कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्युक्ता द्विजपत्न्यस्ता यज्ञवाटं पुनर्गता ते चान सूयवस्था भी स्त्री भी सत्रं पारयन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थल पर लौट गईं, ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला और उन्होंने उसके साथ यज्ञ पूरा किया। बड़ा सुंदर परपट लिखा है प्रभुपाद ने, ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया और वे अपने पतियों के यज्ञ स्थल को लौट गईं, लेकिन गोपियां कृष्ण द्वारा आदेश दिए जाने पर भी उनके साथ पूनम की रात में नृत्य करने के लिए वन में रहती रहीं। गोपियां तथा ब्राह्मण पत्नियां दोनों ने ही शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त किया। भगवान के आदेश का पालन करना, सिंपल बात। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति ईर्ष्या रहित और श्रद्धा पूर्वक मेरे आदेश का पालन करता है वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस बंधन में हम लोग पड़े हुए हैं उस बंधन से मुक्त होने का एक ही सिंपल उपाय भगवान ने बता दिया, और उपाय क्या है कि मेरे आदेश का पालन। यहां क्या है, आदेश का पालन हुआ तो शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, और भगवान का प्रेम मिलेगा तभी भगवान के धाम जा सकते हैं। किसी के घर में भी जाने से पहले घर वालों से प्रेम होना आवश्यक है, भगवान का प्रेम मिला है तो भगवान के धाम में जाने का रास्ता स्वयं ही खुल गया है, फिर आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत सिर्फ प्रेम प्राप्त करने में करनी है, उसके बाद कोई आपके लिए कार्य नहीं। 35वें श्लोक में जो है बता रहे हैं, तत्र का विद्रता था भगवंतम यथाश्रुतम हृदोपगृह विजहो देहम कर्मानुबंधनम। उनमें से एक महिला को उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था, जब उसने अन्यों के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना तो उसने अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन किया और वह भौतिक शरीर त्याग दिया जो भव बंधन का कारण है। ये सिचुएशन आज हमारे पास डिफिकल्ट है कि हमें कोई मंदिर आने से रोके तो हम शरीर त्याग दें, आत्महत्या करना एक अलग बात है, शरीर का स्वयं छूट जाना एक अलग बात है। स्वयं छूटने में और आत्महत्या में भेद है। जैसे कई बार हम देखते हैं भौतिक संसार के अंदर कोई शोक भरी घटना हुई, हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गए, वो सिचुएशन अलग है। पर शोक भरी घटना को सुनकर वो मरने के लिए जहर पी ले या कुतुब मीनार से जाके छलांग मार दे, ऐसा नहीं, वो आत्महत्या कहलाएगी। स्वयं ही प्राण निकल गए एक अलग बात है, तो यहाँ प्राण स्वयं निकल रहे हैं, उसने शरीर को त्याग दिया है, अर्थात वो भव बंधन के कारण से, भव बंधन से मुक्त हो गए। यहां पर वर्णित महिला कृष्ण के प्रति विशेष रूप से समर्पित थी, उसने अपना भौतिक शरीर त्यागते ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया और यज्ञ स्थल छोड़कर भगवान से जा मिली। अगले श्लोक में कहते हैं, भगवान अपि गोविंद स्तैने वाने न गोपकान चतुर्विधा नाशित्वा स्वयं चे बुझे प्रभु। भगवान गोविंद ने ग्वाल बालों को वे चार प्रकार का भोजन कराया, तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान ने भी उन व्यंजनों को खाया। अगले श्लोक में कहते हैं, एवं लीला नर पुनर्लोकम अनुशीलयन रेमे गो गो गोपी नाम रम्यन रूप वाक्ते। इस तरह अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने समाज की रीतियों का अनुकरण किया। उन्होंने अपनी गौवों ग्वाल मित्रों गोपियों अपने सौंदर्य वाणी तथा कर्मों को प्रसन्न करते हुए आनंद लूटा। यहाँ ये बात जो है समझने वाली है कि भगवान नराकार लेते हैं, परंतु उनका जो शरीर है वो माया का नहीं बना होता, दिव्य है। लोग जो है कहते हैं भगवान ने जो है नराकार लिया है तो हमारे जैसा शरीर है, हम में और उनमें क्या फर्क है, बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत धारणा है। ईशोपनिषद पढ़ेंगे उसमें भी स्पष्ट उल्लेख आता है, भागवतम स्पष्ट उल्लेख आता है, भगवद्गीता में स्पष्ट उल्लेख आता है कि भगवान जो है वो दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है, उनके कर्म दिव्य हैं, दोनों दिव्य हैं। तो इस बात को कभी भी नहीं सोचना है कि भगवान ने नर का आकार लिया है तो उनका शरीर हमारे जैसा है, हमारे हमारी तरह है। ये बिल्कुल ही गलत सोच है, गलत धारणा है। और जो लोग ये बात कहते हैं उनको मायावादी कहा जाता है, वो मायावादी। 38वें श्लोक में कहते हैं, अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अवंतपयन कृतागस यद विश्वेश्वरयोच्याहम अन्वम निर्णम व्यो। तथा प्रातः ब्राह्मणों को चेत हुआ और अधिक पछताने लगे। उन्होंने सोचा हमसे बहुत पाप हुआ है क्योंकि हमने सामान्य मनुष्य के वेश प्रकट हुए ब्रह्मांड के दो स्वामियों की याचना अस्वीकार कर दी। प्रभुपाद जी बरपट में लिखते हैं, भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम ने ब्राह्मणों को धोखा नहीं दिया, उन्होंने उनसे सीधे भोजन की याचना करी, प्रत्युत ब्राह्मणों ने अपने आप को धोखा दिया, जैसा कि निमृणमेव शब्द से सूचित होता है, जिसका अर्थ है कृष्ण बलराम ऐसे सामान्य पुरुष के लिए मोहित हैं जो उनको एक सामान्य व्यक्ति समझता है। तो भी चूंकि ब्राह्मण पत्नियां भगवान की परम भक्त थी, इसलिए मूर्ख ब्राह्मणों को आध्यात्मिक लाभ हुआ और अंत में उन्हें चेत हो गया। तो यहां जो शब्द है, जो ये सेंटेंस है, मूर्ख ब्राह्मणों को, इस शब्द से परिलक्षित होता है कि जो व्यक्ति भगवान को समर्पित नहीं है या भगवान के कार्य के लिए मनाही करता है या भगवान की सेवा में नहीं आता है या भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करता है, वो मूर्ख है, इज अ फूल। समझदार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसे बिना किसी अपील, बिना किसी दलील, बिना किसी डाउट, बिना किसी शक, बिना किसी संदेह के स्वीकार कर ले। सोचना नहीं है कि जरा ये समझाइए। तीन दिन पहले मुझे एक फोन आया नजफगढ़ से, एक भक्त है, यंग 20-22 साल का बालक होगा। ए प्रभु जी, मेरे मन में ना बड़े दिन से एक प्रश्न उठ रहा है। मैंने कहा जी पूछिए, क्या प्रश्न है? ये बताइए कि भगवान शिव के नटराज नृत्य में और भगवान कृष्ण के रास नृत्य में क्या भेद है? अरे तू पहले कृष्ण को तो समझ ले, जुम्मा जुम्मा चार दिन हुए भगवद गीता पढ़ते हुए, अभी उसको पढ़ा नहीं समझा नहीं, तुम रास नृत्य में पहुंच गए। छलांग बीमारी तो कहां जाके लटके, भागवतम के दसवें स्कंद में भगवान के रास, और फिर रास से उलट के कहां आ रहे हैं कि शिव जी का नटराज नृत्य कैसा है और भगवान का रास नृत्य कैसा है। मैंने कहा तुझे भगवद गीता का पहला श्लोक आता है? नहीं, वो तो नहीं आता है। तो बाजी क्या कहते हैं कि ग्रंथों को समझने के लिए सबसे पहले आपको भगवत गीता समझनी चाहिए। ए बी सी डी है ये भागवत ज्ञान की स्कूलिंग है। स्कूलिंग एक जगह नहीं, अपने लेक्चर्स में परपट्स में प्रभुपाद जी ने सैकड़ों जगह इस बात को कहा है, 100 times कि सबसे पहले आपको भगवत गीता आनी चाहिए। उसके बाद जब ग्रेजुएशन करनी है तब आपको भागवतम पढ़नी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो चैतन्य चरितामृत पढ़नी है। तो भगवत गीता का तो पहला श्लोक आता नहीं, फिर उसमें भी एक शर्त कंडीशन अप्लाई करती है कि भागवतम पढ़नी है तो पहले स्कंद से आरंभ करना है और फिर जाके 9 स्कंद पूरे करने के बाद 10वें स्कंद में प्रवेश करना है, और 10वें स्कंद के अंदर भी जो भगवान की अंतरंग लीलाएं हैं उनको नहीं पढ़ना है जब तक तो गुरु का आदेश ना हो। और यहां जो है ना भगवत गीता पढ़ी ना भागवतम के 9 स्कंद पढ़े, सीधा छलांग मारी रास नृत्य में। ये रास नृत्य के बारे में बताइए कि रास नृत्य में और भगवान शिव जी के नटराज नृत्य में क्या भेद है, अब क्या समझाएं इन लोगों को। इट इज सो डिफिकल्ट टू, मतलब पब्लिक जब सवाल करती है, पब्लिक जब प्रश्न करती है, उसे ये नहीं मालूम होता है कि मेरा अपना प्लेटफॉर्म क्या है, मुझे किस लेवल पे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सीधा छलांगे मारते हैं ऊंची ऊंची। तो यहां जो है क्या चर्चा हो रही है कि हमें बेसिकली मूर्ख नहीं बनना है, हमें समझदार बनना है। समझदार बनने का तरीका क्या है, समझदार बनने का तरीका क्या है, गुरु कहे और मैं मानूं, खत्म बात। बड़ी अच्छी बात लगी। मैं अभी गुड़गांव में थोड़ा सा कार्य कर रहा था जन्माष्टमी का, तो मैंने कहा अच्छा देखो आपके जो वॉलंटियर्स हैं इनकी मैं लिस्ट आपको मेल कर दूंगा, तो आप जो है मेल खोल के पढ़ लेना और उनसे ताल्लुक कर लेना। कहता है जी मेरे पास तो ईमेल है नहीं। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेरी पेन ड्राइव में है, मेरी पेन ड्राइव से मैं कॉपी करवा दूंगा। इंटरनेट नहीं लिया तुमने? कहता नहीं मेरे पास कंप्यूटर भी है लैपटॉप भी है दोनों हैं, पर मैंने इंटरनेट लेने से पहले गुरु महाराज से पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं आपको इंटरनेट नहीं यूज करना अभी, नॉट फॉर दैट, नहीं लेना। तो मैंने इंटरनेट नहीं लिया है। अर्थ क्या हुआ कि गुरु ने कही और मैंने मानी, क्यों? गुरु को मालूम है कि इंटरनेट खोलते ही दुनिया भर के संसार इसके सामने खुल जाएंगे और ये भक्ति से कहीं ना कहीं बाएं दाएं भटक जाए। इसलिए गुरु ने आदेश दिया कि तुमको इंटरनेट का प्रयोग नहीं करना है। शिष्य ने एक मुश्त बिना किसी डाउट बिना किसी अपील बिना किसी दलील के गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली कि मैंने इंटरनेट नहीं लेना। वो फॉर्मेट है जिसमें कि हम कहते हैं वी आर इंटेलिजेंट बिकॉज हम जो है गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। अगर हम गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं, गुरु का आदेश मतलब भगवान का आदेश, तो हम जो है मूर्ख हैं। 39वें श्लोक में कहते हैं दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवती कृष्णे भक्तिं लौकिकीं आत्मानं च तयाहीनं नृपता विहगान। अपनी पत्नियों को भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य भक्ति और अपने को उस भक्ति से विहीन देकर ब्राह्मणों को अति खेद हुआ और अपने आप को धिक्कारने लगे। धिकारने का अर्थ क्या है? पश्चाताप हो रहा है। बहुत साधारण भाषा में कहेंगे तो कहेंगे कि मैंने इस चीज को स्वीकार ना करके बहुत बड़ी गलती करी है, वेरी बिग मिस्टेक। मुझे इस बात को स्वीकार ना करके बड़ी लज्जा महसूस हो रही है, बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि मैंने जो एक सही रास्ता था, जो एक सही ज्ञान था, जो सही मार्ग था, उसको स्वीकार नहीं किया और मैं गलत रास्ते गलत मार्ग पे चलने का प्रयास करता रहा। यहां जो है जो आज का श्लोक है उसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है क्रिया दाक्षिण्यम, कर्म कांड में हमारी दक्षता को। जब भी कोई व्यक्ति कर्म कांड के प्रति आकर्षित हो जाता है तो उसका आकर्षण भगवान के प्रति नहीं हो पाता। भगवान यही बात जो है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 42वें, 43वें, 44वें श्लोक में कहते हैं कि उसका ध्यान जो है वेदों में वर्णित उस ज्ञान तक पहुंचता है जहां पर कि आपको भौतिक सुख भोग इंद्रिय तृप्ति भौतिक लाभ प्राप्त करने के साधन दिए हुए हैं। उससे आगे जो ज्ञान कांड है जो उपासना कांड है वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता, उसी कर्म कांड के अंदर उलझ के रह जाता है। और यहां ब्राह्मणों के साथ भी क्या हुआ है कि कर्म कांड में ही उलझ के रह गए। भगवान आए हैं द्वार पर, उसको स्वीकार ही नहीं किया है। जब उन्हें बाद में पता लगा है कि पत्नियां तो भगवान के दर्शन कर आई हैं, भगवान का सानिध्य भी हो गया है, उनसे बातचीत भी हो गई है और उनको जो है जो उनकी रिक्वायरमेंट थी फुलफिल हो गई है, तब उन्हें लगा कि हमें बड़ी शर्म आ रही है, हमारी बड़ी लज्जाजनक स्थिति है। तो कहते हैं हमारा इतना विद्वता इतना ज्ञान इतनी नॉलेज का क्या फायदा जब हम उस ज्ञान को भगवान के लिए प्रयुक्त नहीं कर सके। मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, बड़ा समझदार हूँ, बहुत चीज़ें समझता हूँ, परंतु मैं सारी चीज़ें भौतिक संसार के लिए समझता हूँ, भगवान के प्रति नहीं समझता। जिस दिन मुझे भौतिक संसार से उलट के भगवान के प्रति चीज़ें स्वीकार होनी शुरू हो जाएंगी उस दिन मेरे को लगेगा यस आज मैं अंधकार से निकल के प्रकाश में आया हूँ, आज मैं अज्ञान से निकल के ज्ञान में आया हूँ। पर अदरवाइज वो जो है इस बात को स्वीकार करके ही नहीं राजी है कि मेरा क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता इस बात को। तो यहां जो कहा गया है तीन बार के जन्म का द्योतक है त्रिविध, शारीरिक जन्म जो माता पिता से होता है, ब्राह्मण दीक्षा और वैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षा। अब आज का वैदिक यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो जब आप जो है संकीर्तन यज्ञ में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, समूह में कीर्तन करते हैं, तो आप देखिएगा मैं बहुत साल हो गए मुझे देखते हुए अकेले कीर्तन करना एक अलग मजा है। और जब आप अकेले कीर्तन कर रहे थे अर्थात जप कर रहे थे बैठे हुए थे और संकीर्तन शुरू हो गया, भक्तों ने कीर्तन शुरू कर दिया और नृत्य भी शुरू हो गया, तो आप कहते हो कि माला फटाफट खत्म हो मैं भी नाचूं, मतलब उत्साह। तब आपका मन जो है जो अकेले बैठे कर रहे थे वो तो बहुत अच्छा है, वेरी वेरी गुड, पर जब संकीर्तन होता है तो वेरी 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 गुड लगता है, उसे बहुत अच्छा है, अभी चलो आधे घंटे के बाद फिर बैठ के जब कर लेंगे, अभी तो जरा संकीर्तन में पार्टिसिपेट कर लिया जाए। तो संकीर्तन यज्ञ के अंदर भी आज की तारीख में हम देखेंगे कि हमने पंजाबी बाग में जब शोभा यात्रा निकलती है, संकीर्तन होता है, नगर कीर्तन होता है और बहुत जगह है, तो लोग दरवाजे से बाहर निकल के देखने आ रहे हैं, भाई हरे हरे रामा हरे कृष्णा वाले भक्त जो है कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, और फिर उनमें आकर्षण होता है, चल के मंदिर में दर्शन तो करें देखें तो सही, ये लोग क्या करते हैं। तो ये जो संकीर्तन है, नगर संकीर्तन है, शोभा यात्रा है, इस तरह के जो एक सामूहिक प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर इतना आनंद आता है। अभी रथ यात्रा हुई थी, कितने लोग थे प्रभु जी, गिनती थी? प्रसाद कम पड़ जाता है कई बार, हमने अगर 10,000 का बनाया है तो पता लगे एक्सपेक्टेड 10,000 थे, आए 15,000-20,000, और बीच में फिर दोबारा बनाना पड़ता है, क्विक एंड फास्ट, जल्दी बनाओ, बड़े लोग हैं, ऐसा भी हमारा अनुभव रहा है। तो ये जो है आज के युग का जो वैदिक यज्ञ है उसके लिए भी हमको जो है दीक्षा लेनी होती है, तैयारी करनी होती है। क्यों? उसके बिना भी तो कर सकते हैं। बिना करने में कई बार व्यक्ति कहता है थोड़ा विचलित हो जाता है, चलो आज नहीं कल देख लेंगे, आज बहुत बिजी हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, पर जब एक बार दीक्षा हो जाती है मन उसमें रम जा, दीक्षा का मतलब है मन का उसमें रम जाना, मन से उसको स्वीकार कर लेना, फिर व्यक्ति कहता है नहीं 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 जो कुछ भी है मुझे जाना जरूर है, पार्टिसिपेट जरूर करना है, मुझे उसमें जरूर शामिल होना है, एंड डेफिनेटली उसको एन्जॉयमेंट मिलती है, उसको आनंद मिलता है। परंतु जब जो है सारे कार्य भगवान के प्रति समर्पण के हैं, सारे कार्य आपको सरेंडर की ओर ले जाते हैं, भगवान के प्रति समर्पण की ओर ले जाते हैं, पर अगर आपने भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं रखी, भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहे, तो सारी पढ़ाई, सारा धन, सारी दौलत, सारा ज्ञान व्यर्थ। यही बात जो है यहाँ कही जा रही है। हरे कृष्णा, श्रील भगवान की।